सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल गे सयाने पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने।
बोले भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज, हम सभी लोगों ने पिछले दिनों बहुत सारी बातों पर विचार किया है। जीवन एक प्रवाह की तरह है और उस प्रवाह में कोई ज्ञानी की तरह पैदा होता है, कोई अज्ञानी की तरह पैदा होता है, कोई धनवान और कोई दरिद्र होता है। कोई किसी भी स्थिति में जन्म ले, कहीं भी जन्म ले और कहीं भी जाकर के उसका मरण हो, लेकिन इस प्रवाह में भले ही और चीजों में फर्क हो पर तीन चीजें तो सबके साथ हैं, जन्म, मृत्यु और बुढ़ापा। ये तीनों चीजें सबके जीवन में, भले ही कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई दरिद्र हो, कोई धनवान हो, किसी के पास बुद्धि बहुत हो और किसी के पास बुद्धि ना हो, इन चीजों में फर्क हो सकता है, लेकिन जन्म सबको लेना पड़ा है, मरण भी सबको करना पड़ेगा और बीच में बुढ़ापे से भी गुजरना पड़ेगा। और तीनों चीजें दुखदाई हैं, क्या जन्म, क्या बुढ़ापा और क्या मरण। दुख भी सबको अपने अपने तरह के, भले ही अलग अलग मिले हों, किसी को किसी बात का दुख है, किसी को किसी दूसरी बात का दुख है, लेकिन ये तीन दुख तो सबके जीवन में। अब सवाल ये है कि इस जीवन के प्रवाह में जहां की जन्म मरण और मृत्यु का दुख सबको है, कौन इस दुख और सुख को कैसे भोगता है, जीवन में घटित होने वाली इन घटनाओं को कौन व्यक्ति किस ढंग से सोचता है, ये भर उसके अपने ऊपर निर्भर है, ये उसका अपना पुरुषार्थ है। एक ही घटना को अलग अलग ढंग से हम सोच सकते हैं, एक ही दुख को अलग अलग ढंग से हम भोग सकते हैं, ये हमारी चॉइस पर निर्भर करता है। एक बहुत पुरानी घटना है कि जब कोई व्यक्ति आगरे के ताज महल में छत पर बैठकर इतिहास लिख रहा था, ताज महल का इतिहास लिख रहा था, और अचानक नीचे बहुत शोरगुल सुनाई पड़ा, तो वो वहां पहुंचा और उसने पूछा कि क्या हुआ। एक व्यक्ति ने कहा, भैया जमाना बदल गया, देखो तो, अच्छा भला आदमी नीचे से जा रहा था, ऊपर से किसी ने बहुत पानी से भरा हुआ और लोटा उसके सिर पे पटक दिया, बताइए कैसा जमाना आ गया। एक ने यह जवाब दिया, दूसरे से पूछा कि भाई हुआ क्या। उसने कहा, साहब अब ऐसा है, पानी का लोटा ऊपर भरा रखा हुआ था और कोई छोटा सा बच्चा आया और उसके हाथ लग गया नीचे गिरा, उसी समय वो जनाब नीचे से निकले और उनके सिर पे। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, अब इसमें इतना बवाल मचाने की और इतना हल्ला गुल्ला करने की क्या बात है। देखना आप, एक ही घटना घटी है कि एक पानी भरा लोटा किसी के सिर पे गिरा है, एक कह रहा है कि जानबूझकर गिराया गया है, दूसरा कह रहा है अचानक गिर गया है, तीसरे से उसने नहीं पूछा और आकर के जो इतिहास लिख रहा था हजारों साल पुराना उसको फाड़ करके चिंदी चिंदी करके फेंक दिया। लोगों ने कहा क्या करते हैं आप, उसने कहा कि मैंने देख लिया संसार, जहां अभी आंख के सामने घटी हुई घटना को कहने वाले लोग एक ही घटना को अलग अलग ढंग से कह रहे हैं, मैं हजार साल पुरानी इस घटना को किस ढंग से लिखूं, कैसा हुआ था ये कौन जानता है। हम जैसा सोच लेते हैं वैसा ही हमें दिखाई देने लगता है। बस ये हमारी अपनी चॉइस है कि हम इस संसार के जन्म मरण और बुढ़ापे की पीड़ा को सोए सोए भोगते हैं या कि जागृत होकर के भोगते हैं। जो जागृत होकर के भोगते हैं वे इस पीड़ा से पार हो जाते हैं, और जो इस पीड़ा को ये मान करके कि कहीं बाहर से आ रही है उन बाह्य कारणों की खोज में लग जाते हैं कि इसने मुझे दुख दे दिया, इसकी वजह से मरण हो गया, इसके निमित्त से मुझे जन्म हुआ है उसमें मुझे हर्ष है, इसके निमित्त से मरण हुआ है इसमें मुझे पीड़ा है, बुढ़ापा इसलिए आ गया क्योंकि मेरी ठीक से देखरेख नहीं की गई है इसलिए शरीर जल्दी जीर्ण शीर्ण हो गया, नहीं तो अभी तो भला चंगा और दिन तक चलता। ऐसी दुनिया भर की चीजें हमारे मन में आती हैं इन जन्म मृत्यु और बुढ़ापे को लेकर के। यदि हम गाफिल हैं, यदि हम मोह से युक्त हैं, जिसको हम कहें कि हम बहुत असावधान हैं अगर, तो इस संसार में घटने वाली घटनाओं को हम अपने मुताबिक देख करके और परेशान हो सकते हैं, और यदि हम चाहें तो बहुत सावधानी से इस पर विचार करें। जानित जई चिंतित जई, जीव जरा मरण भय दुखई, विशेषु न विरज्जई, अहो सुबद्धो माया गंठियो। ये मोह की मिथ्यात्व की ग्रंथि इतनी प्रबल है कि यह जीव जानता है, विचार भी करता है कि यहाँ जन्म जरा और मृत्यु की पीड़ा के अलावा मुझे कुछ नहीं मिला, इसके बावजूद भी संसार से विरक्त नहीं हो पाता। ये इतनी अधिक गहरी गाफिलता है, हम चाहें तो इस असावधानी से बच सकते हैं, हम चाहें तो बहुत सावधान होकर के अपना जीवन जी सकते हैं, हम इस जन्म मृत्यु के खेल से पार हो सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, ये खेल हम खेल रहे हैं, स्वयं अपने परिणामों से खेल रहे हैं, इस तरफ ध्यान नहीं जाता हमारा। बाकी सब चीजों में ध्यान है, अगर ज्ञान कम है तो ज्ञान हासिल करने में लगे हैं, धन कम है तो धन की कोशिश में लगे हुए हैं, और जितनी चीजों की कमी वेशी महसूस होती है उन सब के लिए हम बहुत एफर्ट कर रहे हैं, उन सब में हम देखते हैं कि कितना अंतर है, लेकिन एक चीज नहीं देखते हैं जिसमें सब समान है, कोई कैसा भी क्यों ना हो उसे जन्म मरण और बुढ़ापा भोगना ही पड़ेगा, उस सब की पीड़ा सबके जिम्मे बराबर बराबर आई है। बाकी चीजों में अंतर हो सकता है, इन तीनों चीजों में तो, और ये तीनों चीजें कौन किस तरह से अपने जीवन में सावधानी पूर्वक लेता है या सावधानी पूर्वक ये, उस पर निर्भर है। एक समुद्र के किनारे वर्षों से एक व्यक्ति और बैठा लोगों से पैसे मांगता था, और लोग उसके सामने कई बार 100-100 रुपए रख देते थे, लेकिन उसके साथ मजा ये था कि वो इस तरह करता था बच्चों जैसा कि बस सिक्के उठाता था, पैसे भर उठाता था, 5 पैसे 10 पैसे 8 आने पैसे, 1 रुपए नहीं उठाता था, 100 रुपए तो छोड़ो 1 रुपए भी नहीं उठाता था, बस सिक्के उठाता था। तो लोग बड़ा मजा लेते थे, लोग आकर के उसके सामने ढेर सारे रुपए रख देते थे, वो छूते ही नहीं था, सिक्के रखते थे तो सिक्के ले लेता था। लोग सोचते थे पागल है, अकल नहीं है इसको, अरे इतने रुपए दे रहे हैं कुछ भी नहीं ले रहा, बस सिक्के सिक्के लेता था। एक व्यक्ति ने जब थोड़ा खाली हुआ भीड़ कम थी तो उससे पूछा कि क्यों, मैं 20 बरस से तुम्हें लगातार देख रहा हूं, तुम्हें इतनी बुद्धि नहीं है, तुम सिक्के सिक्के उठाते हो, दो चार दस ठो, अरे लोग 100-100 रुपए रख रहे हैं तो तुम उठा क्यों नहीं लेते। बोले सुनो, मैं गैर बुद्धिमान नहीं हूं, लेकिन मैं इस खेल को चलने देना चाहता हूं, जिस दिन रुपए उठा लूंगा ये खेल खत्म हो जाएगा, ये खेल खत्म हो जाएगा जिस दिन मैं रुपए उठा लूंगा, उस दिन लोगों को मालूम पड़ जाएगा। अभी तो लोगों को ये मालूम है कि बिल्कुल बुद्धू आदमी है, बिल्कुल पागल आदमी है, इसके सामने कितने ही भी रखो ये तो सिर्फ सिक्के उठाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी ऐसा ही खेल खेल रहे हों? वो तो खेल नादानी में खेल रहा है, लेकिन हम भी कितने अकलमंद हैं, क्या हम नहीं जानते हैं कि जन्म मृत्यु और बुढ़ापे के दुख के अलावा यहां कुछ नहीं मिला? जैसे कि वो भी जानता है, ऐसे ही हम भी बुद्धिमान हैं, सब जानते हैं, कौन नहीं जानता, लेकिन इसके बाद भी इस जन्म मृत्यु और बुढ़ापे के खेल में हम शामिल हैं, अज्ञानी बन करके शामिल हैं, हम खेल खेल रहे हैं। इस चीज का ये समझ में नहीं आता, उसका खेल तो समझ में आया लेकिन अपना खेल समझ में नहीं आता। जान बूझ करके जो व्यक्ति करता है उसको तो यही कहेंगे कि खेल खेल रहे हैं। जैसे बच्चे अपने हाथ से अपनी आंख पर पट्टी बांध लेते हैं और छियाछाई का खेल खेलते हैं, ढूंढो ढूंढो चूहो कहां है। हम और उनमें जान बूझ कर अंध बने हैं, आंखन बांधी पाटी, जिया जग धोखे की टाटी। ये भजन है, वही बात कहना चाह रहे हैं कि हम सब कुछ जानते हुए, जानित जई चिंतित जई, जीव जानता भी है विचार भी करता है कि यहां जन्म मरण और बुढ़ापे के अलावा मैंने कुछ प्राप्त नहीं किया, बाकी सब चीजें बहुत प्राप्त की होंगी, लेकिन ये चीज मुझे सबसे ज्यादा दुख देने वाली है, लेकिन फिर भी इस खेल से हम बाहर नहीं होते। जिस दिन हमें ये खेल झूठा मालूम पड़ने लगता है, बस वो है आत्म जागृति के क्षण, और जिन क्षणों में किसी के भी अंदर ये आत्म जागृति आ जाती है कि अब इस जन्म मृत्यु और बुढ़ापे के खेल से मैं बाहर हो जाऊंगा, बस मानिए उसी दिन वो महाव्रति मुनि या कि अनुव्रति श्रावक बन जाता है। नैष्ठिक श्रावक वही है जो कि अपने जन्म मृत्यु और बुढ़ापे के खेल से बाहर होने के लिए तत्पर हो गया है। प्रतिमाएं जो ग्रहण करता है वो नैष्ठिक श्रावक है, और प्रतिमाएं ग्रहण करने वाला अपने भीतर संसार शरीर और भोगों की वास्तविकता को जानकर इस खेल से बाहर होने के लिए प्रयत्न करता है। सारे व्रत इसीलिए ग्रहण किए जाते हैं ताकि इस जन्म मृत्यु और बुढ़ापे की पीड़ा से हम निकल जावें। और इतना ही नहीं, प्रतिमाओं के साथ ये बड़ा मजा है कि जो संकल्प हम एक बार ले लेते हैं उससे आगे का संकल्प जब हम लेते हैं तो पुराना संकल्प ज्यों का त्यों कंटिन्यू बना रहता है। ऐसा नहीं सोचना कि हमने पहले जो संकल्प लिया था अब उससे बड़ा संकल्प लेंगे तो पुराना वाला अब आवश्यक नहीं है, बड़ा संकल्प ले लिया बस वही हम निभाएंगे, ऐसा नहीं है। पहली प्रतिमा में जिन चीजों का संकल्प करते हैं दूसरी प्रतिमा में भी वे ही चीजें होती हैं, कुछ और नई चीजें जुड़ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आगे पाठ पीछे सपाट, पहली पढ़ ली अब पहली दूसरी में चले गए तो पहली वाला कुछ भी नहीं पढ़ना है, यहां ऐसा नहीं है। दूसरी में गए हैं तो पहली वाला भी पढ़ना है, दूसरी वाला भी पढ़ना है। दोनों संकल्प धीरे धीरे, संकल्प की शक्ति बढ़ती जाती है, धीरे धीरे संसार शरीर और भोगों से विरक्ति बढ़ती चली जाती है, और हम समझने लगते हैं कि अब मुझे ऐसा कुछ करना है जिससे कि जन्म जरा और मृत्यु का ये खेल मैं खत्म कर सकूं। निरतिक्रमण मनुव्रत पंचकमपि शील सप्तकम चापी धारयते निश्चल्यो यो असौ व्रतिनाम मतो व्रतिका। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने दूसरी व्रत प्रतिमा के बारे में लिखा है कि जो पांच अणुव्रतों का और उसके साथ सात सील व्रतों का निरतिचार निर्दोष रूप से पालन करता है और निश्चल होता है, वो व्रती है। हम सब लोग जब तक व्रती नहीं बनेंगे तब तक कल्याण की शुरुआत नहीं होगी। पहली प्रतिमा से अकेले काम नहीं चलता, कम से कम दो प्रतिमा के व्रत लेने पर व्रती कहलाता है। व्रती श्रावक ही सिर्फ देव आयु का बंध करता है, अन्य आयुओं का बंध नहीं होता। उसे खोटी आयु से बच जाता है, या कि व्रती रह करके और अंतिम समय में अगर अनुव्रतों के बाद वो महाव्रत ग्रहण कर ले तो उसी भाव से बिना कोई आयु बांधे जन्म मरण के खेल से पार हो सकता है। इतना बड़ा डिक्लेरेशन है आचार्य भगवंतों का। पहले कह रहे हैं कि व्रती बन जाए, अगर जीवन भर व्रती बना रहे, दो प्रतिमाओं का पालन करके घर गृहस्थी में रह के और जीवन के अंतिम क्षणों में महाव्रत धारण करे अंतर मुहूर्त के अंदर, और अपने समस्त कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान और मुक्ति भी पा सकता है एक श्रावक। और अगर नहीं पा सके तो यो श्रावक व्रतपाल स्वर्ग 16 उपजावे तैते चय नर जन्म फाये मुनि भय शिव जावे। इससे ज्यादा और कोई शॉर्टकट नहीं है। एक श्रावक के लिए भी आध्यात्मिक विकास इतना कर सकता है कि श्रावक के 12 व्रतों का पालन करके निरतिचार और स्वर्ग में उत्पन्न हो और वहां से आए मनुष्य बनकर मुनि हो और मोक्ष चला जाए। या तो देव आयु बांधता है और या फिर कोई आयु नहीं बांध करके और सीधा मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। ये 12 व्रत जो निर्दोष रूप से श्रावक के द्वारा, अभी महाव्रतों की बात नहीं कर रहे, एक श्रावक अपने जीवन में एक हाउस होल्डर, एक घर गृहस्थी में रहने वाला व्यक्ति भी अपने जीवन को इतने ऊंचे उठा सकता है, ये आचार्य भगवंतों का कहना है। अब सवाल ये है कि हम उनकी कही बात को कितना कर पाते हैं, आज के वातावरण में कितना संभव है। संभव तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या करें, हमने अपने चारों तरफ अपने कमजोरी से इस तरह अपना जीवन बना लिया है कि अब उसमें ये सारी चीजें बहुत मुश्किल लगती हैं। प्रतिमाओं का पालन करना आज सबसे ज्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि प्रतिमाएं सामान्य व्रत नहीं है, जीवन भर का मामला है। जीवन के अंतिम क्षण तक मैंने अभी तक सिर्फ 1-2 लोगों को प्रतिमा दी है, और वो भी जब उन अम्मा जी ने बहुत जिद की तब ललितपुर में, और उनके बेटे बहू ने आकर के कमिट किया कि आप निश्चिंत होकर इनको दीजिए, जीवन के अंतिम क्षण में शुद्ध भोजन खिलाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं, कुएं का पानी और हाथ की चक्की का आटा, हम इनको मर्यादा का भोजन खिलाएंगे, बस ये अपने परिणाम संभाले रहे, बाकी हम संभाल लें। उनके अपने बेटे बहू ने ये कमिट किया। मैंने कहा फिर तो बहुत आसान है पालन करना, वरना आसान नहीं है। अभी हाथ पैर चलते हैं तब तक तो आप सब कर लेंगे, उसके बाद फिर इतनी पराधीनता हो जाती है कि फिर बहुत मुश्किल होता है। पर फिर भी भावना तो भानी चाहिए। अपन ये इसलिए समझ रहे हैं कि जितना संकल्प हम कर सकें वो तो हम करेंगे, बाकी जो हम नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए हम भावना अवश्य भाएंगे। कैसे होते हैं 12 व्रत, ज्यादा कठिन नहीं है। मैं अब अपने जन्म मरण और बुढ़ापे की पीड़ा से बचना चाह रहा हूं, इसलिए मैं अब अपने जीवन में किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा जानबूझ करके। हो गया अहिंसा अनुव्रत। मैं किसी के भी मरण में निमित्त नहीं बनूंगा, मैं किसी के दुख में निमित्त नहीं बनूंगा। अब मैं ऐसा संकल्प करता हूं, यह अहिंसा अनुव्रत। मैं किसी को किसी की चीज हड़प करके तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, अचौर्य अनुव्रत। मैं किसी से झूठ बोल करके उसे दुख नहीं पहुंचाऊंगा, सत्यानुव्रत। बताइएगा, सब में वही चीज है। मैं किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा मार पीट करके, मैं किसी के धन हड़प करके पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा, किसी से झूठ बोल के पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा, किसी के प्रति अपने मन को खोटा करके उसे पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। ध्यान रखना, हम दूसरे के दूसरे के बारे में खोटा विचार करके और उसे पीड़ा पहुंचाते हैं, उसे हमारी बैड विशेष मिलती हैं, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि हमने दूसरे के बारे में कुछ खोटा सोचा तो उसको क्या फर्क पड़ा, नहीं, उस तक वो बात, थॉट वेव्स आज साइंस ने खोज ली है, हमारे विचार भी दूसरे को प्रभावित करते हैं, इतने सूक्ष्म रूप से प्रभावित करते हैं। तो दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचूंगा, दृष्टि बुरी नहीं करूंगा, ब्रह्मचर्य अनुव्रत, मैं इतनी चीजें संचित करके नहीं रखूंगा कि दूसरे का हक छिन जाए। जब जब भी हम अपनी आवश्यकता से ज्यादा चीजें इकट्ठी करके रखते हैं, मानिए हम दूसरे का शोषण कर रहे हैं, उसका हक छीन रहे हैं। गांधी जी ने लिखा कि नदी मेरे गांव से और मेरे आंगन के बाहर से बहती है, इसका मतलब ये नहीं है कि नदी मेरी हो गई, मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं है। मेरा अधिकार सिर्फ जब मैं अपने पीने के लायक पानी लूं उतने पर है, बाकी सब सबका है। ये सोच होना चाहिए, तब आएगा अब परिग्रह का परिमाण, इच्छाओं का परिमाण। ये पांच अणुव्रत, कोई कठिनाई है इसमें मुझे बताइए? है कठिनाई? अगर ऐसा भीतर सोचेंगे तो जरा मुश्किल तो मालूम पड़ेगी, कितनी सावधानी रखना पड़ेगी। और इतने ही नहीं, अब दिशाओं में आने जाने की सीमा निर्धारित, स्थान कितनी दूर कहां तक जाऊंगा इसकी सीमा निर्धारित, मन वचन काय से वो क्रियाएं नहीं करूंगा जो अनिष्टकारी हैं, दूसरे का अपकार करने वाली। अनर्थ दंड व्रत, दिग्व्रत, देश व्रत, यही तो है, और कोई बड़ी चीज है क्या? अब मैं निरंतर अपने परिणाम संभालने के लिए सुबह दोपहर शाम पंच परमेष्ठी का स्मरण करने बैठूंगा, आत्मा का चिंतन करूंगा, पर पदार्थों से मैं अब थोड़ी थोड़ी देर के लिए दूर रहने का अभ्यास करूंगा सामायिक। अब मेरा मन ऐसा होने लगा है कि पूरे दिन भर ये सब चीजें जो मैंने जोड़ रखी हैं इनसे दूर रहूं, इन सब की आसक्ति मुझे ना घेरे, इसलिए मैं अब पूरे दिन धर्म ध्यान पूर्वक बिताऊंगा, धर्मामृतम शतृष्णा। अब मैं धर्मामृत का ही पूरी जागृति के साथ पान करूंगा, भोजन पान इत्यादि नहीं करूंगा। पर्व के दिनों में अब मैं उपवास लेऊंगा और दिन भर धर्म ध्यान करूंगा, प्रोषधोपवास आ गया व्रत। अब मैं अपने शरीर से जितनी बन पड़ेगी, अपनी वाणी से जितना बन पड़ेगा, अपने मन से जितना बन सकेगा, त्यागी व्रती लोगों की सेवा करूंगा, अतिथि संविभाग, यही है ना व्रत, और कोई कठिन है क्या? ये बहुत आसानी से हमारे जीवन में हम चाहें तो ला सकते हैं। इस तरह इन 12 व्रतों को जो व्यक्ति अपने जीवन में अंगीकार करता है, वो व्यक्ति जन्म मरण और बुढ़ापे के खेल से, इस पीड़ा से बाहर हो सकता है। इतना ही तो आचार्य भगवंतों ने हमें सलाह दी। और सबसे बड़ी चीज, जो भी इन व्रतों का पालन करे वो निश्चल होकर के पालन करे। निश्चल होने के मायने, जो निश्चल है वो व्रती है, ऐसा नहीं कह रहे हैं, जो व्रती है वो निश्चल है। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कि निश्चल हो सकते हैं लेकिन व्रती नहीं है, इसलिए कह रहे हैं कि जो व्रती हो उसका निश्चल होना अनिवार्य है। शल कौन सी कहलाती? जो कि एक जैसे कांटा भीतर चुभ जाए और टूट जाए और फिर वो अंदर ही रहा है, तो भीतर भीतर जो चुभता रहता है ना, शल के समान वही कांटा, शल बोलते हैं कांटे को, चुभे हुए कांटे के समान जो भीतर भीतर हमें पीड़ा देता रहे वो कहलाती शल। वो तीन होती हैं, माया, मिथ्या और निदान। व्रतों को अंगीकार कर लेने के बाद भी असंयम की तरफ चले जाना, देखो, और बाहर से तो व्रती दिख रहे हैं और भीतर से व्रतों के प्रति बिल्कुल सम्मान नहीं रहा, ये क्या कहलाएगा? माया नाम की शल। अब ये अपनी ही चीज अपने को चुभेगी भीतर भीतर कि अरे यार, लोग तो मुझे बहुत अच्छा मान रहे हैं, लोग तो मुझे व्रती मान रहे हैं, लेकिन मैं तो जो है ऐसा, भीतर से तो मेरे परिणाम बड़े खराब हो जाते हैं। ये बात भीतर चुभेगी, इसलिए कह रहे हैं कि व्रती व्यक्ति को माया शल से रहित होना चाहिए। मिथ्या शल, सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा तो है लेकिन भीतर ही भीतर बीतरागी के अलावा अन्य रागी द्वेषी के प्रति भी थोड़ा लगाव अभी बना हुआ है। हाँ, ये भी तो है, ये भी है, ये भी ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, सब ठीक, सब चलता है। महाराज भी तो कुछ नहीं कहते, कभी तो नहीं कहते, वो तो ये कहते तुम्हें जैसा करना वैसा करो। एक तरफ बीतरागी को पूज रहे हैं और दूसरी तरफ रागी देशी को भी धीरे से मन ही मन ठीक मान रहे हैं कि वो भी ठीक है। ये मामला जरा टेढ़ा है, सीधा नहीं है, ये मिथ्या शल है, ये व्रती व्यक्ति को भीतर भीतर चुभती रहती है, इसलिए सावधानी रखनी चाहिए। एक बार अगर वीतरागता के प्रति समर्पण आ गया है तो फिर अन्य वीतरागी के अलावा किसी के प्रति भी श्रद्धा का भाव मन में उमड़ना ही नहीं चाहिए। अगर मन में जरा भी प्रशंसा का भाव आता है तो मानिएगा वो हमारे अंदर धीरे धीरे चुभेगा। और निदान, वैसे तो मुझे किसी चीज की आकांक्षा नहीं है, मैंने तो सब छोड़ दिया है, लेकिन अब आगे जरा अच्छा कुछ मिल जावे, हम इतनी तपस्या कर रहे, इतना त्याग कर रहे, हमने तो व्रत लिए हैं, अब हमारी जा जिंदगी तो जैसी है सो नैसी निकल गई, आगे की तनक अच्छी मिल जावे, तनक सुख सुविधा अच्छी मिले, ऐसा मन में भाव आ जाना, ये है निदान शल। अब मैं त्यागी व्रती हूं तो चार लोग जरा इस संसार में हमें पूछें तो हमारा तो नाम तक नहीं बोलो, हमने 10 दिन के उपवास करे, भूल गए हुई हमने लिखवाओ तो हतो वैसे मनोमंच से बोलो ही नहीं है उनने, अरे अपने अपने लोगों का बोलते हैं ये लोग, हमारा बोले ही नहीं, ये क्या है? ये व्रतों के साथ में आगामी यश वैभव ख्याति और भोगोपभोग की आकांक्षा नाम का निदान शल है, ये भीतर भीतर बनी रहती है, बड़ी सावधानी रखना चाहिए। व्रत लेने वाले आचार्य भगवंत जानते थे कि व्रत लेने के बाद भी और मन में ये तीन बातें बनी रह सकती हैं, असंयम छोड़ के संयम लिया है, असंयम की तरफ झुकाव ना हो जाए, सावधान रहना, राग द्वेष को छोड़ करके वीतरागी की तरफ श्रद्धान किया है, फिर से कहीं वीतराग भेंट्यो अबे मेटो राग कुटे, अब वीतराग से भेंट हो जाने के बाद ऐसा ना हो कि मेरा मन फिर उसी राग द्वेष में चला जावे, और मैंने जब संसार शरीर और भोगों की तासीर समझ ली है, इनमें सुख नहीं है, तो ऐसा ना हो कि मेरा मन इन सब को छोड़ देने के बाद भी फिर से उसी तरफ चला जाए। ये तीनों चीजें बहुत सावधानी की हैं, तो व्रती व्यक्ति को निश्चल होकर के इन व्रतों का पालन करता है तब फिर वो अवश्य अपने जीवन का कल्याण कर लेता। एक छोटी सी घटना सुनाऊं और बात अपनी पूरी हो जाएगी, इतना ही पर्याप्त है। मैं इतना ही सोच के आया था, इससे ज्यादा और जितना सोचता हूँ उतना ही बता देता हूँ आपको, ज्यादा कौन, अब हम थक गए बहुत, कितनी सारी चीजों पे अपन डिस्कशन कर, थके थके हैं, हारे नहीं है, ये ध्यान रखना, हारना अलग चीज है, थक करके थोड़ा विश्राम करेंगे फिर तैयार हो जाएंगे फिर चलेंगे। देखो तो कैसा होता होगा ज्ञान, हम तो कई बार सोचते हैं जो सर्वार सिद्धि के देव हैं, अहमिंद्र हैं, वे 33 सागर की आयु तक रोज नई नई चर्चा धर्म की करते हैं, कभी रिपीट नहीं करते, इतना ज्ञान होता होगा, और केवल ज्ञान तो और कैसा होता होगा। द्वादशांग जिसको पूरा जिसके हाथ में है वो जीवन भर नई नई चीजों का चिंतन करता है अपने कल्याण के लिए, संसार में संसार बढ़ाने के लिए तो हम कितनी चीजों इजाद करते हैं, नई नई चीजें, लेकिन अपने मोक्ष मार्ग के लिए हम रोज कुछ नया विचार करें, कर रहे हैं अपन थोड़ा थोड़ा। एक घटना जो मैं आपसे कह रहा था, बड़ी मजे की घटना है, वो कल सहसा याद आ गई थी। क्या हुआ कि एक साधु जी जो है बड़े शांति से अपना जीवन जीते थे, उनको कोई विकल्प नहीं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं, तो जो लोग भी देखते थे, देखो त्यागी व्रति अपना कल्याण तो करता ही है, और अगर वो ठीक ढंग से अपने व्रत नियमों का पालन करे तो दूसरे को कुछ बिना कहे भी रास्ता मिल जाता है। हाँ, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज के समय में। आज के समय में त्यागी व्रति को देख करके दूसरे के अंदर त्याग तपस्या की भावना उत्पन्न होना बहुत कठिन हो गया। समझाने के बाद भी नहीं और देख करके भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके जीवन में जो त्याग तपस्या है वो उसके जीवन को इतना एनलाइटेड नहीं कर पा रही है कि दूसरे भी उससे प्रकाश पा सके। ये चीज धीरे धीरे, या तो पंचम काल का यही दोष कह लो कि अब पहले तो जरा सा दूसरे को व्रत नियम लेते एक रात त्यागी व्रति को देख करके अपने मन में त्याग तपस्या करने का मन नहीं होगा, बल्कि उसकी हंसी उड़ाने का, उसका कहीं कोई फॉल्ट मालूम पड़ जाए, बस कहीं कोई चीज लूपोल कहीं मालूम पड़ जाए एक आध चीज, फिर उसको इंटरटेन करेंगे, फिर मजा करेंगे उसका, खुद ऊंचे नहीं उठेंगे। ये काल दोष कह लो या कि हमारे उपादान की कमी कह लो, उस तपस्वी को देख करके एक व्यक्ति को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, भगवान आपकी तपस्या अद्भुत है और आप ऐसे कैसे जीवन जीते हैं, आपको संसार के बीच रहकर के भी संसार की किसी चीज की आसक्ति नहीं होती। उन्होंने कहा कि देखो ये सब बातें तो मैं बाद में बताऊंगा, अभी तो मुझे ये मालूम पड़ गया है कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। अब देखना मजा, सबको याद आ गया, 7 दिन के भीतर तुम्हारी मृत्यु होने वाली, ये बाकी तो बाद में बताऊंगा तुम्हें। वो कहने लगे कि क्या कर रहे हैं बाबा जी आप, सही कह रहा हूं। अब इनको प्रश्न व्रश्न पूछना खत्म, अब तो भीतर मच गई हड़बड़ाहट घबराहट। गए घर में, सबसे कहा कि कुल 7 दिन बाबा जी ने कह दिया है, आप सुनो, जिसका जो देना लेना हो हमारे सामने ही दे लेके चुकता करो, और वो जो हैं जिनसे हमारी बुराई चल रही अब तुम उनसे मत रखना बुराई, हम भी जा रहे हैं उनसे क्षमा मांगने। अब क्या करना, 7 दिन बाकी बचे। अब देखिएगा पूरी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई, खाने पीने में कल तक तो ये नहीं बना वो नहीं बना, हमारे मन का नहीं है, ये लाओ वो करो, कुछ नहीं, जो परोस दिया चुपचाप खा लिए। 7 दिन और बचे, एक निकल गया दो निकल गए, बड़ी मुश्किल जैसे तैसे 7 दिन बीते, बाबा जी के पास पहुंचे और कहा कि आप तो कह रहे थे कि 7 दिन में मर जाओगे, लेकिन मैं तो भला चंगा हूं, आपने अच्छा बुद्धू बनाया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, 7 ही दिन में सब मरते हैं, 8वें दिन कोई नहीं मरता, 7 दिन ही हैं, 7 दिन में ही सब मरते हैं, कोई सोमवार को कोई मंगलवार को कोई बुधवार, 7 ही दिन है मरण के, इनमें से किसी ना किसी दिन मरण होगा। और तुम वो जो हमसे पूछ रहे थे कि क्यों ऐसे संसार के बीच और प्रसन्नता पूर्वक सावधानी पूर्वक आप रहते हैं, तो उसका उत्तर तुम्हें स्वयं मिल गया, मुझे बताओ 7 दिन तुम्हारे कैसे बीते। उसने कहा, किसी से कोई राग द्वेष नहीं रहा, कौन शत्रु कौन मित्र, क्या खाना क्या पीना, बस मैं तो ऐसे जिया हूं बहुत आराम से शांति से, कि अब क्या करना, ज्यादा फैलाना नहीं, अब प्रपंच में नहीं पड़ना। अगर ऐसा ही अपने मन में आ जावे तो व्रत नियम घटित होना ज्यादा देर नहीं लगने वाली। व्रती कोई कैसे हो जाता है, उसके मन में ये भाव अगर आ जावे कि क्या करना, अब संसार बढ़ाना क्या, क्या शत्रु क्या मित्र, सब ठीक है, ऐसे अगर जीवन में दृष्टि आ जावे तो ये सब चीजें बहुत आसान है। भैया हम अपनी दृष्टि को बदल करके और चाहें तो इन सब चीजों को अपने जीवन में हासिल करके अपना कल्याण कर सकते हैं। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि।
ए गुरुवर शाश्वत सुख दर्शन।
यज्ञनाग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है।
पर पहचान वे को परा